मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 10 दिसंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम पर बात कर रहे हैं और यह आयाम भावना का आयाम है। कल मैंने आप सबसे एक अर्ज की थी और वो ये कि आप सब ने जो भावना की अभी तक की यात्रा की है उसका थोड़ा सा जायजा लें और जानने और समझने की कोशिश करें कि पहले हमारी भावनाएं कैसी थी, आज वे भावनाएं किस रूप में हैं। हो सकता है कि बेहतर हो गई हों, अधिक गहरी हो गई हों, उनमें फैलाव अधिक आ गया हो, वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा गीली हो गई हों, यानी कि उसमें रूखा सूखापन नहीं आया है बल्कि वो और भी ज़्यादा चमकदार हो गई हों, बेहतर हो गई हों। दरअसल होता यह है कि अगर आप मेरी इन बातों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकें, निकाल कर उन पर विचार कर सकें, तो होगा यह कि सही मायने में मैं जो कहना चाह रहा हूं आप न केवल उन बातों को समझ ही पाएंगे बल्कि उस पर यकीन भी कर पाएंगे और इस तरीके से मेरी बातों को अपने जीवन में उतार कर शायद बेहतर बनाने की ओर अग्रसर हो सके। तो दोस्तों, इसीलिए मैं इस तरह के छोटे मोटे अर्ज बीच बीच में कर दिया करता हूं, इस विश्वास के साथ कि शायद आप कुछ ऐसा जरूर करेंगे। आइए अब मैं भावना के एक दूसरे पक्ष की बात करता हूं। फ्रेंड्स, इस धरती में जो भी चीज है, चाहे बाजार में वो बिक रही हो या मुफ्त में अवेलेबल हो, आप देखिए कि उनकी कीमत हम किस तरीके से आंकते हैं। अगर बाजार की दृष्टि से सोचें तो हम उसके लिए एक भुगतान करते हैं, पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद वह चीज हमारी हो जाती है। तो जितनी भी कीमत हमने उस चीज के बदले में दी है वह उसकी कीमत होती है, राइट? एक बोतल पानी आप 20 रुपए की खरीदते हैं तो उस पानी की कीमत 20 रुपए हो जाती है। लेकिन घर में अगर पानी आ रहा है, बरसात का पानी बरस रहा है, उसके लिए आप कोई भी धन नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आप यूं कह लीजिए कि चूंकि कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो आप उसका कोई मूल्यांकन भी नहीं कर रहे हैं और कोई मूल्य भी नहीं आंक रहे हैं, आपके लिए वो सामान्य सी वस्तु है। तो बाजार में हम वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण इसी तरीके से करते हैं, ठीक है? ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है और दुनिया का जो लेन देन है वो इसी तरीके से होता चला आ रहा है। लेकिन मूल्य के निर्धारण का एक दूसरा पक्ष भी है और उसी पक्ष पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक पत्थर है जो सड़क पर पड़ा हुआ है, अच्छा पत्थर है, ठीक ठाक है, देखने में सुंदर है, सड़क पर पड़ा हुआ है। आप साइकिल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, आपको पत्थर वो पड़ा हुआ दिखता है, आपकी जो बाइक है या साइकिल है टकराते टकराते बच जाती है, लेकिन आप एक समझदार नागरिक हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इस पत्थर को किनारे कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरे में कोई दूसरा साइकिल वाला आए, बाइक वाला आए और इससे टकरा करके एक्सीडेंट उसका हो जाए। तो आप उस पत्थर को किनारे कर देते हैं, सड़क के बीच से हटाकर किनारे कर देते हैं। अब वो कैसे किनारे करते हैं ये आपके ऊपर है, हो सकता है कि आप पैर से ही उसे हटा दें और किनारे कर दें, या हो सकता है कि हाथ से उठा करके आप किनारे कर दें, वो आपके ऊपर है, आप उसे किनारे कर देते हैं, राइट? एक दो साल के बाद, ये मैं एक काल्पनिक स्थिति आपके सामने रख रहा हूं, एक दो साल के बाद आप एक मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि उस मंदिर में एक पत्थर रखा हुआ है। उसको देखने के बाद आपको लगता है कि इस पत्थर को तो मैंने कहीं देखा था। जब आप अपने दिमाग पर दबाव डालते हैं तो आपको याद आ जाता है कि हाँ हाँ, ये वही पत्थर है जो उस दिन सड़क पर पड़ा हुआ था और फिर मैंने इसे अपने पैर से हटाते हटाते सड़क के किनारे पहुंचा दिया था, ये सोचकर कि कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, ये तो वही पत्थर है। लेकिन अब पत्थर कहाँ है? वो पत्थर मंदिर में रखा हुआ है, राइट? अब आप अपना मूल्यांकन कीजिए, अपना मूल्यांकन इस मायने में कि अब उस पत्थर के साथ जो आपका बिहेवियर होगा, इंटरेक्शन होगा, कार्यप्रणाली होगी, वह किस तरीके की होगी। देखिए, मैं ये सब के बारे में नहीं कह रहा हूं, आपकी बात आपको बहुत स्पष्ट होगी चल करके। याद कीजिए कि उस दिन आपने उस पत्थर को एक बुरा पत्थर मानते हुए, एक्सीडेंट का एक कारण मानते हुए अपने पैर से ठुकरा ठुकरा करके किनारे किया था, लेकिन क्या अभी भी आप उस पत्थर को वही मान रहे हैं? या कि चीजें बदल चुकी हैं। अब वो पत्थर आपके लिए पत्थर नहीं है, अब वो पत्थर एक्सीडेंट का कारण नहीं है, बल्कि हो सकता है कि लोग उस पत्थर के सामने आए और आप स्वयं ही हों। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं अपने बाइक से, तो ईश्वर से प्रार्थना करें, उसी पत्थर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना, मुझे एक्सीडेंट से बचाना। यही पत्थर जो पहले एक्सीडेंट का कारण था, अब आपके लिए एक्सीडेंट के बचाव का आधार बन जा रहा है। यही वो पत्थर है जिसे आपने अपने पैरों से ठुकरा ठुकरा करके सड़क के किनारे किया था, और पता लगा कि अब इसी पत्थर के सामने आप साष्टांग पड़े हुए हैं, उस पर अक्षर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, धूप दीप चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अब आपको केवल यह सोचना है, अब दो बातें हैं। अगर आप भौतिक स्थिति के आधार पर सोचें तो पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उस पत्थर के अगर उस समय कोई टुकड़ा अगर आपने रख लिया होता और अगर आप उसका रासायनिक परीक्षण कराते तो बिल्कुल वही चीजें उसमें मिलती जो अब के पत्थर में है। मतलब उसके रासायनिक चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पत्थर ज्यों का त्यों है। तो क्या हुआ? आपके बिहेवियर में परिवर्तन हुआ है, आपका व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल बदल गया है। यह व्यवहार क्यों बदला है? बस आपको यह सोचना है। इसलिए बदला है क्योंकि उस पत्थर के प्रति अब आपकी भावनाएं बदल गई हैं, भावनाएं। और आप देखिए कि केवल भावनाओं के बदल जाने से उस पत्थर की कीमत कितनी बदल गई है, उसका स्वरूप कितना बदल गया है, आप सोच करके देखिए। अद्भुत तरीके से अब वह पत्थर आपके लिए एक ब्रह्म स्वरूप बन गया है, अद्भुत तरीके से। और याद रखिए, सबके साथ नहीं होगा, आप यह मत समझिए कि सबके साथ होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नास्तिक ही उस मंदिर में जाता है, आपका दोस्त है, आप उसे पकड़ करके ले जाते हैं, तो उसके लिए वो पत्थर पत्थर होगा। या कोई दूसरे धर्म का बहुत ही कट्टर व्यक्ति ऐसा जाता है जो इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करता है, तो उसके लिए वो पत्थर पत्थर होगा। लेकिन आपके लिए वो पत्थर पत्थर नहीं होगा, आपके लिए वो कुछ दूसरा होगा। और ये सभी धर्मों के साथ है, ये सभी लोगों के साथ है, सभी भावनाओं के साथ है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने यहां पत्थर का उदाहरण इसलिए लिया है कि इसे आप चाहे शिवलिंग के रूप में ले लें, या हमारे यहां जो देवी देवताओं के स्वरूप होते हैं उस रूप में ले लें, इसलिए मैंने यह उदाहरण लिया है। सबके साथ नहीं होगा। किसके साथ होगा? यह उसके साथ होगा जो अपनी भावनाओं का संचार उसमें कर सकेगा। याद रखिए, ऐसा नहीं कि ऐसा सबके साथ हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, नॉट एट ऑल। तो अब केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उस पत्थर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा देना, उसकी अहमियत कह लीजिए, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, इतना अधिक कर देने वाला तत्व कौन सा है? वो पत्थर या आप? आपको इस पर विचार करना है। तो शायद आपको भावना की जो महिमा होती है वो समझ में आए। तो दोस्तों, इस पर आप सब भी अपने अपने ढंग से विचार कीजिए। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।